श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रमाई की, श्रील प्रभुपाद की जय। अभी मेरे बात बोलना आप सब लोग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय, देवकी नंदनाय च, नंदगोपकुमाराय, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरंधस्य ज्ञानंजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा। तो आज के इस हमारे कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। इस कार्यक्रम का नाम प्रेमांजलि है, आपको पता है। तो ये प्रेमांजलि कार्यक्रम गंगा नर्सिंग होम में अभी 19 जुलाई से शुरू हुआ है। 19 जुलाई से इस हॉस्पिटल में आध्यात्मिक विभाग का उद्घाटन किया गया है ना। तो उसमें क्या परिवर्तन हुआ, उसके बाद में हॉस्पिटल में भगवान का नाम स्पीकर के द्वारा गूंजने लगा, भगवान की हॉस्पिटल के अंदर पूजा होने लगी, हमारे प्रतीक प्रभु जी मरीज को बिस्तर पे जो एडमिट है उनको जाकर मिलने लगे और भगवान के विषय में चर्चा करने लगे, उनकी शंकाओं का समाधान, उनको भगवान के विषय में प्रेरणा अनुभूतियाँ देने लगे। फिर सुबह की प्रार्थना होने लगी, सब स्टाफ लोग मरीज लोग बैठे हुए हैं वो सुबह एक बार सबके सामने खड़े होकर प्रार्थना करते हैं, 5 मिनट का कुछ बोध सुनते हैं भगवान के विषय में और क्या करते हैं, कहाँ गए वो, ठीक है। तो ऐसे कुछ महत्वपूर्ण कार्य हम लोग कर रहे हैं। आपको फिर थोड़ी देर के बाद में तो यहाँ पर केवल प्रसाद भगवान का दिया जाता है, कोई लहसुन प्याज मच्छी अंडा नॉनवेज कोई आता नहीं है। जो भी भगवान को भोग लगता है शुद्ध भोजन जो है मरीज को दिया जाता है। और ये हफ्ते में एक बार सब स्टाफ लोग को इकट्ठा करके उनके लिए सत्संग होता है, ताकि हमारे स्टाफ भी धीरे धीरे भगवान की भावना में आएंगे तो उनकी सेवा में भी थोड़ा अंतर पड़ेगा, थोड़ा भाव थोड़ा सा चेंज हो जाएगा उनका। इस तरह से मरीजों की उच्च दर्जे से वैद्यकीय सेवा करते करते लोगों को भगवान के विषय में परिचय, भगवान के विषय में संबंध, भगवान भावना का जीवन कैसे जीना है इसका भी ज्ञान अस्पताल के माध्यम से प्राप्त हो सकता है। इसका 20 साल से अनुभव हम ले रहे हैं हमारे बड़े अस्पताल में जो बॉम्बे में है, उसको 20 साल पूरे हो जाएंगे। तो 20 साल में हमने ये हजारों लाखों लोगों को एडमिट होने के बाद में भगवान के वातावरण का लाभ दिया है, परामर्श दिया है, क्योंकि सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट होता है भगवान की भावना का वातावरण, जिससे आपको आते ही लगे कि हम भगवान के मंदिर में आ रहे हैं, भले अस्पताल है लेकिन लगता है मंदिर जैसे ही है। ऐसे वातावरण में बीमारी को ठीक करना बड़ा अद्भुत अनुभव होता है। बीमार सब जगह पड़ते हैं लोग, हाँ केएम हॉस्पिटल में पढ़ते हैं, ससुन में पढ़ते हैं, ब्रूबी हॉल में पढ़ते हैं, सब बीमारी सब जगह पर है, लेकिन एक ऐसा उदाहरण होना चाहिए कि बीमार पड़ने के बाद में आध्यात्मिक वातावरण में अच्छा होने का मौका मिलना चाहिए। हमारे मंदिर के ब्रह्मचारी लोग बीमार पड़ते हैं तो 12 महीने मंदिर में रहते हैं, एकदम शुद्ध वातावरण में रहते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से जब बीमार पड़ते हैं तो उनको ऐसी जगह भर्ती होना पड़ता है जहाँ पर नॉनवेज भी सर्विस किया जा रहा है, हाँ सिगरेट पीने वाले डॉक्टर्स भी ट्रीटमेंट दे रहे हैं, कोई कल्चर नहीं है डॉक्टर नर्सेस के अंदर, कैसा व्यवहार करना है, कैसे कपड़े पहनने हैं, कैसी बात करनी है, केवल पैसे के लिए जो बनाया गया ऐसे संस्था में इलाज करना पड़ता है। तो ये सबका असर आदमी के चेतना पर पड़ता है। और लेकिन जब वातावरण पवित्र हो, हेतु केवल पैसे के लिए नहीं हो, दर्द का निवारण ही हेतु हो, भगवान का नाम से लोगों के दर्द का निवारण ये हेतु हो, तो लोगों के अच्छे होने में प्रक्रिया में बहुत फर्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। क्योंकि हम लोग क्या कहते हैं, मैं भी कोई डॉक्टर हूँ, वो हॉस्पिटल का मैं उप संचालक हूँ भक्ति वेदांत हॉस्पिटल का, तो हम क्या कहते हैं कि हम दवा देते हैं और वो ठीक करता है, ऐसे हम बोलते हैं ना, आई आई ट्रीट ही हील्स, हम केवल कोशिश करते हैं, बाकी ठीक करना नहीं करना उनके हाथ में होता है। ये भाव लिखने में अच्छा रहता है, सब लेटर हेड पे लिखा रहता है, लेकिन उसको मानते कोई नहीं है। जब मरीज अच्छा होता है तो मैंने अच्छा किया ऐसे बोलते, अच्छा नहीं हुआ क्या करे, हमने तो कोशिश किया, भगवान की इच्छा नहीं थी, ऐसे बोल लेते हैं। यश को अपने जिम्मे कर लेते हैं और अपयश को भगवान के जिम्मे कर लेते हैं। हरे कृष्णा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान की भावना, अस्पताल में आना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अस्पताल में सबसे ज़रूरतमंद स्थिति में डॉक्टर मरीज रहता है। बाकी क्या, घूमने गया है, वही ट्रिप में गया है, पढ़ने गया है, तो इतना डेस्परेट कंडीशन में रहता नहीं है। लेकिन जब बीमार पड़ता है तो बहुत उत्कट डेस्परेट कंडीशन में रहता है, उसको तत्काल अच्छी मदद चाहिए। केवल शरीर को बचाने के लिए नहीं, उसके मन को और आत्मा को बचाने वाली भी सेवा होनी चाहिए। तो ये मन और आत्मा, मन और शरीर के साथ आत्मा की भी सेवा करने के लिए ये सब प्रयोजन बनाए हैं। और धीरे धीरे आपको भी, आप रेगुलरली आएंगे प्रोग्राम में, ऐसा किसी हॉस्पिटल में होता नहीं है कि मरीज एडमिट हो गया, इलाज हो गया, सब कुछ डिस्चार्ज हो गया, फिर उसको बुलाया जा रहा है, ऐसा कभी होता नहीं। नोबडी केयर्स, बस हो गया आपका बिजनेस ख़त्म, अगली बार आओगे तो अगली बार बिजनेस करेंगे। लेकिन डॉक्टर का काम तब पूरा होता है जब वो भगवान के विषय में मरीज को गाइड करता है, या खुद नहीं कर सकता है तो दूसरों को बुला के गाइड करवाता है, तब उसका जो ट्रीटमेंट है वो पूरा हो जाता है शास्त्र के अनुसार, मेरे और आपके अनुसार नहीं, शास्त्र के अनुसार जब उसका परिपूर्ण हो जाता है। नहीं तो बताता हूँ कैसे परिपूर्ण नहीं है। हाँ आपको मालूम है कैसे परिपूर्ण नहीं है वो। फॉर एग्जाम्पल समझो, अब आपके पास में एक लुटेरा आ गया, वो लूट रहे लूट करते करते गिर गया और फ्रैक्चर हो गया उसका, चोरी करते करते वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। डॉक्टर ने पूछा क्या हुआ, तो मैं जा रहा था तो गिर गया, मैं मेरा फ्रैक्चर हो गया, तो हम प्लास्टर लगाएंगे, उसको ठीक करेंगे, दवाई देंगे, दर्द की दवा देंगे, अच्छा उसका बोन सेटिंग करके देंगे। हाँ जैसे ही पैर ठीक हो जाएगा दोबारा चोरी करने लगेगा वो। अभी आप बताइए, जो उसके बाद में वो चोरी करेगा उसका कर्म कौन कौन शेयर करेगा? डॉक्टर को भी शेयर करना पड़ेगा, अनजाने में अच्छी भावना से किया उसने, लेकिन उसको पता नहीं है कि वो आगे जो कर्म करेगा उसका हिस्सा इनको भी आएगा, हमको भी आएगा। वो तो शराबी आदमी को जो बुखार आ गया बहुत, और एडमिट हो गया, तो जब एडमिट था तभी शराब नहीं पीता है, वो बुखार आ गया, वो डर लग रहा है उसको, आपने दवा देके उसको ठीक कर दिया, जैसे डिस्चार्ज हो जाएगा बोला बहुत दिन से पिया नहीं है, शाम को अभी डिस्चार्ज होते ही रात को पिएगा, तो उसका कर्म हमको भी लगेगा। ये हमको पता नहीं होता है, हम तो खाली ट्रीटमेंट करते हैं, हिस्ट्री पूछते हैं कब बुखार आया, कभी ज़्यादा हो गया कभी कम हो गया, और दवा देते हैं डिस्चार्ज कर लेते हैं। समझो कोई आतंकवादी आपके यहाँ एडमिट हो गया, समझो उसको भी डेंगू हो गया, समझो भारत में आतंकवाद करने को, वो मच्छर काट ले यहाँ का और यहाँ भर्ती हो गया, और आपने उसको ठीक किया कुछ 15 दिन के बाद में, बहुत परेशान था ठीक हो गया, फिर जो 15 दिन पहले करने का काम था वो 15 दिन के बाद में किया उसने आतंकवादी, तो उसका आपको हिस्सा लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा ना। तो ये जो कर्म के, ये मुझे पता नहीं था जब मैं डॉक्टर बना, तब मुझे ये पता नहीं था कि ये ऐसा भी होता है। तो मैंने संतों को पूछा ये क्या करना चाहिए, ऐसे भी हम लोग तो भी डॉक्टर बने, हमारे पास कौन आता है, डकैत आता है, आतंकवादी आता है, कि कोई व्यभिचारी आता है, कि मांसाहारी आता है, झूठ बोलने वाला आता है, फ्रॉड आता है, हमको कैसे मालूम पड़ेगा? हम तो मेडिकल हिस्ट्री पूछते हैं, उसके हम आध्यात्मिक हिस्ट्री पूछते नहीं है, कभी चोरी किया था क्या? सभी पूछते हैं, आपको पूछ सकते हैं क्या हिस्ट्री में कभी आपने चोरी किया? कभी झूठ बोला है आपने? बोले आपके आपसे क्या मतलब, आप बुखार के बारे में पूछो। तो हम लोग तो बेकार में फंसे जा रहे हैं इसके कर्म के अंदर, क्योंकि हमारी जीवन में भी कर्मों का हिसाब किताब होता है। तो उन्होंने कहा कि जब डॉक्टर अपने वैद्यकीय सेवा के साथ में मरीज का शरीर को ठीक करते हुए जब भगवान के विषय में ज्ञान देता है तो इन कर्मों से वो मुक्त हो जाता है। तो उस आध्यात्मिक गाइडेंस का मतलब क्या हो गया, उसको बताना पड़ेगा कि बीमारी क्यों आती है। बीमारी आती है पिछले कर्मों से। और कौन से कर्म सबसे खराब होते हैं, फिर चार कर्म सबसे खराब कौन से होते हैं उसको बताना पड़ेगा, जो पाप के स्तंभ है। हाँ, पाप की अगर कोई मंजिल है, कोई इमारत बनी हुई है, तो चार खंभों पर खड़ी होती है वो। एक होता है व्यभिचार का खंभा, एक होता है मांसाहार का, हिंसा का, एक होता है नशा करने का, और एक है जुआ खेलने का। द्यूत क्रीड़ा, हिंसा, व्यभिचार और नशा, ये चार चीज जो है ना वो इतने सारे पापों के बीच में बड़े स्तंभ है। वो और भी स्तंभ है छोटे वाले, झूठ बोलना, किसी को लूटना, किसी घर में आग लगा देना, किसी का खून करना, विश्वासघात करना, ये भी बहुत भयंकर पाप कर्म है। तो अभी आप अमेरिका जाएंगे, लोगों को बोलेंगे व्यभिचार करना पाप है, तो बोले क्या बात कर रहे हो, यहाँ तो हम हर दिन किसी के साथ घूमते रहते हैं, हर हफ्ते में नई हमारी गर्लफ्रेंड होती है, नॉर्मल लगता है लोगों को। आप बोलेंगे शराब नहीं पीना है, बोले क्या बात कर रहे हो, हमारा तो इतना ठंडी है शराब पीनी पड़ती हमको। ऐसा ही एक व्यक्ति हमारे प्रभुपाद जी को मिलने आया था, बड़ा प्रोफेसर था वो, बहुत बड़ा। और प्रभुपाद जी ने कहा, उन्होंने प्रभुपाद जी को पूछा कि महाराज जी हमको ना ब्राह्मण बनना है, हमने सुना है, हमने पढ़ा है, हमारे रीडिंग में आया है कि ब्राह्मण भी कोई एक अच्छी चीज़ होती है भारत में, आप हमें ब्राह्मण बना दो। तो उन्होंने कहा ठीक है बना सकते हैं। बोले क्या करना होगा, तो उन्होंने कहा कि व्यभिचार छोड़ देना होगा, नशा छोड़ देनी होगी, चाय कॉफ़ी तक छोड़ देनी होगी, फिर किसी प्रकार का जुआ पैसे का अफरा तफर यहाँ पर नहीं होना चाहिए, और व्यभिचार नहीं होना चाहिए, एक पत्नी बस, एक बार विवाह करना है, बस एक ही पत्नी के साथ जिंदगी बितानी है एंड तक, कोई डिवोर्स विवर्स नहीं होता इसके अंदर, और रोज 16 माला का जप करना है, भगवान की किताब पढ़नी है, हाँ उत्सव मनाने हैं मंदिर जाके, खाने पीने में लहसुन प्याज चाय कॉफ़ी कुछ भी नहीं होना है, और भगवान को अर्पण करके केवल प्रसाद खाना है। तो बोलता है इम्पॉसिबल, ये नहीं करेंगे तो मैं करूँगा क्या लाइफ में, ये तो ज़िंदगी है, ये विचार करना, नशा करना, जुआ खेलना, ये तो मेरी लाइफ स्टाइल है, मतलब ये हमारा जीवन का अविभाज्य अंग है। तो बोले आप ब्राह्मण नहीं बन सकते फिर, ऐसा है, लोगों को पता ही नहीं है इसके बारे में। तो डॉक्टर वैद्य जो होता है ना, वो वैद्य पुराने ज़माने में ब्राह्मण खुद हुआ करता था। जब वो ब्राह्मण ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर रहा है तो 18 विद्या प्राप्त करता था। वो 18 विद्या में आयुर्वेद वैद्यकीय विद्या भी आती थी, बाकी उसमें वाणिज्य भी आता था, सब कुछ शास्त्र सब कुछ पढ़ता था वो। 18 विद्या पारंगत होकर गुरुकुल से निकलकर फिर भी अपना प्रैक्टिस करता था। और केवल प्रैक्टिस करना उसका काम नहीं था, लोगों को भगवान के विषय में ज्ञान देना उनका काम था। उसमें कभी बीमार कोई हो गया तो नवस देख के उसका इलाज करता था वो। कोई पैसे लेता नहीं था, कोई धान्य ला के देगा आधा किलो चावल, या कोई सब्जी ला के देगा अपने खुद के गार्डन की, वो दक्षिणा मान के वो ले लेगा। ज़रूरी नहीं कि मैंने आपकी नब्ज़ देखा तो नब्ज़ देखने का 2 सोने की मोहरे और जड़ी बूटी दिया 4 सोने की मोहरे, ऐसा नहीं था, चार्ज नहीं था उसका। साथ में वो भगवान के विषय में ज्ञान भी देता था उनको, उसके उपदेश के द्वारा, प्रवचन के द्वारा। तब जाकर वो कोई गंदे आदमी का इलाज भी किया या अच्छे आदमी का इलाज किया, दोनों के कर्मों से वो फ्री हुआ करता था, उसके जीवन की शुद्धि कभी भी दूषित नहीं होती थी। तो आज भी जब हम लोग डॉक्टर लोग MBBS करने के बाद, MD करने के बाद जब हरे कृष्ण में आते हैं, भक्त बनते हैं, तो हमको ये ज्ञान दिया जाता है कि कर्मों का खेल सब जगह पर है, और जब तक हम कर्म से मुक्त नहीं होते तब तक यहाँ से निकल नहीं सकते हैं, दोबारा आना पड़ेगा। अभी डॉक्टर बन के आए, कल इंजीनियर बन के आएंगे, तो उसके बाद में मिनिस्टर बन के आएंगे। अरे आना ज़रूर है, आना जाना यहाँ निरंतर, कोई नहीं परमानेंट, कर ले राम भजन अर्जेंट। हाँ यही है। तो इसलिए ये अभी स्पिरिचुअल केयर, आध्यात्मिक देखभाल, आध्यात्मिक विभाग यहाँ खोला गया है, ताकि एक तरफ से हमारी शुद्धि, हम भी अलिप्त हो गए उससे, और दूसरी तरफ मरीज जो आ रहे हैं दुख भोग रहे हैं, है ना, किसी को ये कष्ट है, किसी को वो कष्ट है, कष्ट तो है सबको शरीर का, कुछ का इलाज हम कर सकते हैं, कुछ का इलाज नहीं कर सकते हैं। कोई भी कोई आर्थिक दृष्टि से गरीब है तो हमको धन नहीं दे सकते, लेकिन बीमार हो गए तो इलाज कर सकते हैं। लेकिन ये करते समय उनको भगवान के विषय में, भगवान का नाम, भगवान का कीर्तन, प्रसाद, दर्शन, भगवान का प्रवचन, उपदेश, ये होगा तो बीमारी जरूर ठीक होगी, साथ साथ में उसके ज्ञान भी होगा उसको कि सब क्यों हो रहा है, उसे बचना कैसे है। और सबसे बड़ी भेंट इसमें मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ दे सकते हैं वो भगवान का नाम, उससे बड़ी भेंट तो दुनिया में कोई नहीं है, ना कोई धन दौलत, कोई बंगला गाड़ी उसकी तुलना कर सकते हैं हम। ऐसी भेंट है भगवान के नाम की कि इस जन्म में प्राप्त किया तो वो आपको दोबारा जन्म लेने के लिए ही मुक्त कर देगी, वो भगवान के पास जाने का रास्ता खोल देगी। भगवान के नाम की महिमा अगाध है, अगाध तो कोई समझ नहीं सकता है कि क्या एक भगवान का नाम कर सकता है। कलिर दोषे निदोर राजन अस्ति एको महान गुणा, वो संत लोग सब जानते हैं कलयुग में कितने दोष भरे हुए हैं। देवताओं को बोलेंगे ना आपको कलयुग में जाना है, कोई तैयार नहीं होगा। जैसे हमारे मेडिकल में कैसे किसी को गढ़चिरौली में पोस्टिंग करेंगे ना तो कोई जाना नहीं चाहता वहां पर। गढ़चिरौली किधर है मालूम है? नक्सलवादियों का एरिया है, तो किसी को पनिशमेंट देना है तो मेडिकल ऑफिसर उसको वहां पोस्टिंग कर देते। तो जैसे ही यहाँ के डॉक्टर, अच्छे डॉक्टर बॉम्बे पूना इधर उनको काम करना है, अच्छे शहर में तरह की अच्छा पेशेंट और अच्छा मिलेगा उसको, तो जैसे ही यहाँ के डॉक्टर गढ़चिरौली पोस्टिंग नहीं चाहते हैं, ऐसे देवता लोग कलयुग में पृथ्वी पर नहीं आना चाहते हैं, वैसे ही कौन जाएगा कलयुग के अंदर पृथ्वी पर, इतने गंदे समय पर कौन जाएगा, इतने पापी लोग रहते हैं वहाँ पर, इतने पाप करते हैं, इतनी दुनिया खराब हो रही है, वी डोंट वांट टू गो, हम लोग नहीं जाना चाहते वहाँ पर। और वैसे भी देवताओं को भी श्राप मिलता है ना कि आप जाओ पृथ्वी पर जाकर जन्म लो, तो देवता लोग बहुत दुखी हो जाते हैं, तो पृथ्वी पर कौन जाएगा, बदबू वाला शरीर है, पसीने वाला शरीर है, मलमूत्र वाला शरीर है, हाँ, और इतनी छोटी सी आयु है, इतने सारे पाप हो रहे हैं, गंदगियाँ हो रही है, हमारे पास सोमरस होता है, हमारा शरीर सुगंधी होता है, वो छोड़ के ये श्राप लेकर कौन नीचे जाएगा। तो ये सारा शास्त्र में दिया हुआ है, उससे हम समझ सकते हैं, केवल हमारे अनुभव से समझने की जरूरत नहीं है, अनुभव से एक समझेंगे शास्त्र के द्वारा उसके आगे जाकर समझेंगे। तो उसी शास्त्र में एक सुंदर कथा आती है जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि हम लोग ये जो नियम पालन करते हैं, ऐसा नहीं कि हमारे हरे कृष्णा वाले मंदिर में हमको बताया इसलिए हम पालन कर रहे हैं उसका, कोई पूछा नहीं क्यों ऐसे, कि ये चार नियम जो है ना हमारे, मांसाहार नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, नशा नहीं करना, ये कहाँ से आ गए। तो उसकी कहानी ऐसी है, आपने राजा परीक्षित का नाम सुना होगा ना, जो अर्जुन के पुत्र थे, अर्जुन दादा थे उनके, है ना। और ये भागवत का नाम सुना होगा ना आपने, श्रीमद् भागवत, हाँ, इसका सब लोग पारायण करते हैं, कथा करते हैं, तो श्रीमद् भागवत में ये कथा आती है। श्रीमद् भागवत का जो पात्र है वही परीक्षित महाराज है, स्वयं परीक्षित महाराज स्वयं श्रोता थे उसके, और सुखदेव जी महाराज जो नारद जी के व्यासदेव के पुत्र हैं वो वक्ता हैं उनके, और उनके बीच बातचीत हुई है उसी को भागवत के रूप में हम जानते हैं। 18,000 श्लोक है, 12 स्कंद है उसके अंदर, स्वयं भगवान का शरीर है वो, उसको वर्णन किया गया है। तो उसमें कथा आती है कि ये परीक्षित महाराज जब राजा बने तो छोटे से थे वो, उनको बालक को सिंहासन पर रख के पांडव लोग चले गए, क्योंकि तो भगवान कृष्ण छोड़ के चले गए दुनिया को, तो वो भी बहुत दुखी हो गए, विरक्त हो गए, छोड़ के चले गए, और ब्राह्मणों के हाथ में बालक को दिया, बालक का भी राज्याभिषेक किया, जब तक बड़ा नहीं होगा तब तक हम देखेंगे, बड़ा होगा तो उसके राज्य में हम चलेंगे। तो जब वो बड़ा हो गया, सयाना हो गया, तो उस जमाने में ऐसी रिवाज थी, राजा जो है ना वो खुद भेष बदल कर एक सामान्य आदमी बन के रात को घूमा करते थे। अभी आपको मालूम पड़ेगा अगर कि हमारे मंत्री जी भेष बदल कर रात को आपके घर पे आ गए तो आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा, अरे तो सुना नहीं था कभी। लेकिन पुराने जमाने में प्रभु रामचंद्र के समय से, उसके पहले से हर राजा अपने प्रजा को क्या चल रहा है देखने के लिए खुद जाते थे, अपने दूतों को भेजते थे। तो वैसे ये जा रहे थे रात को एक बार दिन में गश्त लगाने के लिए, तो क्या देखते हैं, एक बैल और एक गाय खड़े, और बैल के तीन पैर काट चुके गए हैं, और एक ही पैर पे बैल लड़खड़ा रहा है, और एक काला सा बड़ा सा आदमी राज वस्त्र पहनकर, मुकुट वुकुट पहनकर, बहुत लेकिन काला रंग का, तलवार निकाल कर तलवार में खून लगा हुआ है, ऐसे खड़ा है। तो एकदम बात जाहिर है कि इसी ने उनके टंग पैर तोड़े हुए हैं। गाय रो रही है, बैल भी रो रहा है, और एक पैर पर लड़खड़ा रहा है। तो राजा के रूप में वो क्रोध से बात करते हैं, किसने किया आपकी स्थिति, उनको देखते हैं कि लगता है आपने किया है, अभी आपका वध करते हैं। मतलब जो गुनाह करता है उसको राजा तत्काल दंड देता है, ऐसा नहीं कि वो कोर्ट में बुलाएगा, फिर वकील लेके आएगा, फिर 2 साल केस चलेगा, फिर उसमें वकील उल्टा सुल्टा बात करके उसको फ्री कर देगा, ऐसा नहीं। तत्काल ये धर्म के राज्य में दंड हुआ करता था। तो वो व्यक्ति कौन था? वो व्यक्ति कली स्वयं था, कलियुग की जो होती है ना मूर्तिमान कलियुग व्यक्ति था, स्वयं कलियुग था वो कलियुग का प्रवेश अभी हो रहा था, तो राजा उसको खत्म करने वाले थे। तो कली ने क्या किया, वो तो होशियार था, वो राजा के चरणों में गिर गया, बोला मैं भी आपकी प्रजा हूँ, मुझे मत मारो, मुझे भी सहारा दो, मुझे भी जगह दो रहने के लिए, क्योंकि वो बोल रहे थे चले जाओ यहाँ से, मैं तो वध कर दूंगा आपका। तो वो बोल रहे नहीं 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 मुझे मत मारो, मैं भी आपकी प्रजा हूँ, मुझे भी रहने को जगह दो, शरण दो। अभी राजा का क्षत्रिय का कर्तव्य है, जो भगवान का भक्त है क्षत्रिय है, उसका कर्तव्य है कि शरण में आए व्यक्ति को मारते नहीं कभी वो। तो उसने कहा जाओ उस जगह जाके रहो जहाँ पर व्यभिचार हो रहा है, जहाँ पर जुआ खेला जा रहा है, जहाँ पर नशा की जा रही है और जहाँ पर हिंसा की जा रही है स्वार्थ के लिए। मनुष्य हिंसा कब करता है जानवरों की? जब उसको भूख लगती है। मतलब वो खाना तो बहुत है दुनिया में, लेकिन फिर भी जानवर को मारकर निर्दयता से क्रूरता से उसका मांस खाता है। ये 4 चीज़ें जहाँ हो रही है वहाँ जाओ। अब इसके बाद में जो बात होती है वो बहुत इंटरेस्टिंग बात है। कली जो है वो राजा परीक्षित का राज्य था ना, पूरे विश्व में था, ऐसा नहीं कि खाली इंडिया का पोर्शन, पाकिस्तान का अलग और इंग्लैंड का अलग और अमेरिका का अलग, ऐसा नहीं था। 50,000 मतलब हमारे यहाँ पर कितने देश हैं, शायद कई सैकड़ों देश है दुनिया में। उस समय एक देश था भारतवर्ष, आर्यावर्त कहते थे उसको, और एक राजा, पूरे अर्जुन भी पांडव भी पूरे पृथ्वी के राजा थे, और ये भी उसके पुत्र जो बाद में पोते बने राजा परीक्षित, वो भी पूरे विश्व के राजा थे। उसके बाद जन्मेजय बने, पूरे विश्व के राजा बने। तो वो जाके पूरे राज्य में, इनकी पूरी पृथ्वी पर सब जगह घूम के आया, उसको किधर भी एक भी जगह नहीं मिली जहां पर मांसाहार हो रहा है या व्यभिचार हो रहा है या जुआ खेला जा रहा है या नशा की जा रही है। आप सोचो, आज तो आपको बिल्डिंग से उतरेंगे तो तुरंत 4 जगह मिल जाएगी आपको, ढूंढने की जरूरत नहीं है। किधर भी दिशा में देखो, 10 कदम चलो, आपको कहीं व्यभिचार दिखाई पड़ेगा, कभी नशा दिखाई पड़ेगा, कभी जुआ, कभी मांसाहार, कभी हत्या, कुछ दिखाई पड़ेगा। इतना हमारा समय है, उस समय से आज सब बिगड़ गया है, और हम सोचते हैं हम लोग प्रगति कर रहे हैं, प्रगति नहीं कर रहे हैं। दिस इज नॉट प्रोग्रेस, दिस इज रिग्रेस, हाँ दिस इज रिग्रेशन, अधोगति है ये। तो वो कली पूरे दुनिया में ढूंढकर लौट के वापस आता है राजा के पास, बोलते राजा आपकी जगह, आपके राज्य में तो कहीं ऐसी जगह है ही नहीं जहाँ पर इनमें से एक काम नहीं हो रहा है, क्या करूँ मैं, मेरे लिए जगह नहीं है। तो राजा ने कहा जहां पर जरूरत से अधिक धन इकट्ठा किया हो वहां जाके रहो। तो उसको बहुत सारी जगह मिल गई, लेकिन वो 4 जगह नहीं मिली उसको उस राज्य में। तो ये जो 4 चीजें जो भागवत में कही गई है, उसी के आधार पर हमारी संस्था में ये 4 नियम पालन करते हैं हम लोग, और उसके पीछे भी रहस्य है। वो बैल के जो 4 पैर का वर्णन किया ना, वो भागवत में बहुत सुंदर वर्णन किया उसका। वो बैल जो है वो धर्म का प्रतीक है, और गाय माँ की प्रतीक है ना, गौ माता। तो बैल के 4 पैर जो है वो 4 अच्छे सद्गुणों के स्तंभ के प्रतीक हैं। एक है दया, करुणा, जिसके खिलाफ जो है हिंसा है, इसका प्रतीक मांसाहार है, है ना। जब मांसाहार करते हैं तो दया नष्ट हो जाती है, जब मांसाहार या किसी की हिंसा नहीं करते हैं बिना मतलब की, तो दया बढ़ जाती है, और दया का जीवन में होना बहुत आवश्यक है आध्यात्मिक उन्नति के लिए। फिर दूसरी बात है शुद्धि, पवित्रता, शुचि, इंग्लिश में सैंक्टिटी कहते हैं उसको, सैंक्टिटी, पवित्रता, वो भी जरूरी है आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए, भगवान की ओर बढ़ने के लिए। और वो नष्ट कैसे होती है? जब हम विवाह बाह्य संबंध करते हैं, व्यभिचार करते हैं, तो हृदय की शुद्धि नष्ट हो जाती है। सबसे अधिक अपवित्रता जो है ना, वो गटर में गिरने पर भी नहीं आती है, आप स्नान करके शुद्ध हो सकते हो, लेकिन सबसे बड़ी अपवित्रता आती है जब हम मनुष्य जीवन में जन्म लेने के बाद में विवाह के बाहर संबंध करते हैं, पहले शादी के या बाद में, जैसे भी हो, विवाह के अंदर संबंध होता है वह व्यभिचार के अंदर नहीं आता है, वह बाह्य संबंध जो है वह व्यभिचार के अंदर आता है, और शुद्धि नष्ट हो जाती है। 2 स्तंभ हो गए। 3रा स्तंभ है सत्य का, एक सत्य का मतलब है सत्य बोलना और झूठ बोलना, एक है सत्य के आधार पे चलना, प्रामाणिकता के पे चलना। ऐसा इनका व्यवसाय है, इसमें भी कोई अफरा तफर नहीं करना, एकदम जितना भी जरूरी है उतना करना, एक रुपया भी एक्स्ट्रा लेना नहीं है, ना गलत एडवाइस देना है, सत्य एडवाइस देना है, डराना धमकाना नहीं है मरीजों को कि आपका ऐसा होगा तो वैसा होगा, फिर बोलना नहीं मुझे, फिर इतना खर्चा होगा। लोग ऐसे करके लोगों को बहुत भ्रमित कर देते हैं और अप्रामाणिक इलाज करते हैं, वो भी असत्य में आता है ना। लोगों को गलत मार्गदर्शन देना, ये करो आप वो करो, ये ज़रूरी है, ये टेस्ट करो वो करो, वो सब असत्य पर आधारित है। हमको सत्य पर जीवन जीना चाहिए। और सत्य के खिलाफ क्या है? द्यूत क्रीड़ा। जब हम जुआ खेलते हैं तो जुए खाने में कोई सत्य होता है क्या? कुछ बताओ आप, तो जुए खाने में आप प्रवेश किया कभी, कोई सत्य की वैल्यू है यहाँ पर? नोबडी केयर्स फॉर ट्रूथ देयर। तो द्यूत क्रीड़ा करने से सत्य नष्ट होता है हमारे अंदर का। और ज़रूरी नहीं कि आपको जुआ ही खेलना है, अगर आप शेयर बाजार में कुछ कर रहे हो या यहाँ कुछ लगा रहे हो, सोच रहे हो कि इसका इतना आएगा फिर मैं इधर लगाऊंगा फिर उसका उतना आएगा, ये भी एक प्रकार का जुआ है। एक जुआ होता है मन का, काल्पनिक, मैं ऐसा करूंगा तो वैसा होगा, फिर वैसा करूंगा वैसा होगा, फिर मैं करोड़पति हो जाऊंगा, फिर मैं हवाई जहाज़ खरीदूंगा, फिर मैं यहाँ से अमेरिका जाऊंगा, फिर मैं ऐसे करूंगा, और फिर मैं लात मारूंगा तो शेख चिल्ले के सब बर्तन टूट गए। बचपन में कथा पढ़ते ना हम लोग, फिर मैं आराम से सो जाऊंगा ऐसे पैर फैला के, वो सारे मटके लात मार के तोड़ देता है, फिर उसका सपना टूट जाता है। वो भी एक मानसिक जुआ है। तीन हो गए ना, अब चौथा कौन सा बचा है? तपस्या। तपस्या केवल मनुष्य के जीवन में होती है, मानते हैं इस बात को आप? कोई कुत्ता बिल्ली पंछी तपस्या करता है क्या? कभी नहीं करता है। तपस्या केवल मनुष्य के लिए, ओनली फॉर ह्यूमन बींग्स। और तपस्या से क्या होता है? इंद्रियों का निग्रह होता है। इंद्रियों के निग्रह से हम भगवान की ओर ज़्यादा प्रगति करते हैं। हमारा मन में विषय में मन भरकता नहीं है, विषयों से अलग होकर भगवान में लगता है। इसलिए नियम का पालन करना बहुत ज़रूरी है। और नियमों का पालन, विधि निषेध जो है केवल मनुष्यों के लिए होता है कि ऐसा नहीं करना है, वैसा करना है, ऐसे जीना है, वैसे जीना है। और कर्म भी खाली मनुष्यों के लिए होते हैं। जब कोई शेर किसी जानवर को खाता है वो कर्म नहीं लगते उसको। जब गाय घास खाती है तो गाय को कर्म लगता नहीं है। जब पंछी कोई कीड़ा खाता है तो उसको नो कर्मा। लेकिन सारे कर्म केवल मनुष्य के लिए हैं, क्योंकि मनुष्य का जीवन सबसे श्रेष्ठ है, इसलिए उसको नीति नियम लगाए गए हैं। बाकी जो निचले जीवन है उसमें कोई नीति नियम नहीं है, वो अपने अपने प्रगति करते रहते हैं। शेर मर गया तो अगली योनि में जन्म लेता है अपने आप, उसका अगले का जो स्टेप है उसको वो जन्म मिल जाता है। जब पंछी मरता है तो उसको अगले का अगला उसका जो उसके लाइन में प्रोग्रेस लाइन में जो भी जीवन है उसको प्राप्त हो जाता है, और लास्ट में मनुष्य का मिलता है जीव को। और फिर सारे नियम, हाँ चार नियम सब लागू हो जाते हैं उसको। तो मैंने क्या क्या बताया आपको? चार स्तंभ होते हैं जो बैल के चार पैर माने गए हैं। एक है सत्य, एक है शुद्धि पवित्रता, एक है दया और एक है सत्य। तो ये चार स्तंभों को अगर आपको बढ़ाना है अपने जीवन में और मजबूत करना है अपने जीवन में, तो आपको ये मांसाहार, व्यभिचार, नशा और जुआ छोड़ना पड़ेगा। ये इसका साइंटिफिक बेसिस है। ये कोई हरे कृष्ण मंदिर के फैक्ट्री में तैयार किए हुए नियम नहीं है, ये भागवत में दिए हुए नियम है। और केवल चार नियमों का पालन करके हम लोग कुछ नहीं बनते हैं, खाली निगेटिव से जीरो में आ जाते हैं। भागवत में लिखा है कि ये चार नियम का पालन करके मनुष्य, जो मनुष्य जन्म का प्राप्ति करके आया है, वो मनुष्य बन जाता है। उसके आगे उसको भक्त बनना है। अभी तो खाली मनुष्य बनने के लिए चार नियम है, और ये चार नियम नहीं पालन करता है तो वो जानवर के बराबर ही है, क्योंकि जानवर चार नियम का पालन नहीं करते। मनुष्य के अलावा जो जीव होते हैं वो ये चार नियम का पालन नहीं करते हैं। और मनुष्य बनकर अगर हम चार नियम का पालन नहीं करेंगे तो हम भी उनकी तरह हो गए ना। मनुष्य माइनस रिलीजन इज इक्वल टू एनिमल। और मनुष्य भी एक प्राणी है, और मनुष्य प्राणी जब धर्म का पालन करता है तो मनुष्य बन जाता है। मनुष्यत्व जो है तब पालन होता है, प्राप्त होता है जब हम ये चार नियमों का पालन करते हैं। और 99% लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। उनको लगता है, जब मैं डॉक्टर बन रहा था ना तो हमको ऐसा बताया जा रहा था, बाय द वे विल बी सरप्राइज टू नो, क्या एक आध दो पेक ले सकते हैं, उसमें क्या है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, एक आध दो पेक तो हेल्थ के लिए अच्छा भी होता है। ऐसा बताते थे, कितने पेपर में आर्टिकल आते थे, अभी भी आते रहते हैं साइंटिफिक रिसर्च कि दिन में चार सिगरेट पीना ब्रेन के लिए और हार्ट के लिए अच्छा होता है। दिन में 30 ml, अगर आप 30 ml ब्रांडी पियोगे तो हृदय के लिए और ब्रेन के लिए बहुत अच्छा होता है। फिर उसके आएगी रिसर्च कि मेमोरी कैसे बढ़ती है और निकोटिन से मेमोरी कैसे बढ़ जाती है और अल्कोहल से कैसे हृदय की नसें खुल जाती है। अरे क्या क्या बताते रहते हो। मन को बहलाने के लिए, अगर आपको लगा कि बीवी से आप बोर हो गए तो मन को बहलाने के लिए साइकोलॉजिस्ट ने रिपोर्ट दिया है कि एक आध बार अगर किसी और संबंध करने से मन बहलता है तो कई मानसिक विकार कम हो सकते हैं। ऐसे सब लोग, ये वेस्टर्न लोग हैं ना, हमको फीड करते रहते हैं। लेकिन हमको पता होना चाहिए कि हमारी संस्कृति सबसे सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है। अभी हमारा जन्म होके कितने हो गया, अभी इंडिपेंडेंस होके 70 साल पूरे हो गए ना अपने। उसके पहले 150 साल उन्होंने राज्य किया हमारे ऊपर, मतलब करीब 225 साल पहले इंग्लैंड के लोग यहाँ पर आना शुरू कर दिया। उन्होंने थोड़ा अपना बिजनेस के नाम से ईस्ट इंडिया कंपनी वगैरह शुरू कर दिया था, तब शिवाजी महाराज भी थे। तभी उन्होंने ये सोच रहे थे वो कि भारत की जो संस्कृति है इसको कैसे तोड़ा जाए और इन लोगों को रूल कैसे किया जाए, इन पर राज्य कैसे किया जाए। और इनकी, हमारी जो संस्कृति है ना, वो इतनी मजबूत थी। एक एक परिवार, मतलब सब ज्वाइंट परिवार ही था। ऐसा कोई ऐसा नहीं कभी, आज देखो पति पत्नी एक बच्चा एक कोने में रह रहे हैं, उसकी मम्मी डैडी दूसरे कोने में रह रहे हैं और बच्चे तो चार कोने में रह रहे हैं। और कभी कभार कोई मरेगा ना तो उसको सब मिलने आते हैं। ये फैक्ट है भाई देव। आजकल के ज़माने मेरे घर पे भी खाली कोई मृत्यु हो गई किसी की ना तो ही सब लोग इकट्ठा होते हैं ऐसे लटके हुए चेहरे से। लेकिन दिवाली और गणपति और ये बर्थडे बर्थडे कोई किसी को मिलने नहीं आता है। वो संस्कृति ऐसी थी कि चाचा मामा तो साथ में ही रहते थे सब लोग, कोई अलग होने का सवाल ही नहीं है। और भाई मतलब क्या, भी मेरा भाई है, मतलब इसमें कज़िन ब्रदर, लेकिन वो भी भाई है मेरा। ऐसा कज़िन ब्रदर मेरे चाचा का लड़का बोलने की रिवाज ही नहीं थी उस समय, उस ज़माने की बात कर रहा हूँ। तो मैक्स मुल्लर नाम के एक व्यक्ति को अंग्रेजों ने तय कर लिया कि तुम बड़े विद्वान हो, जाओ भारत का स्टडी करो। पूरा स्पॉन्सर किया उसको, टीम दिया, पूरा खर्चा वर्चा व्हीकल फ्लक्स कुछ दिया उसको। बोले भारत के संस्कृति का स्टडी करो और यहाँ पर कैसे छेद सकते हो, तोड़ सकते हो उसको बता दो। तो मैक्स मुल्लर ने पूरे भारत भ्रमण किया, तो किसी भारतवासी में नहीं किया होगा, इतना प्लान करके उनने भारत का भ्रमण किया। और उसके बाद में 1837 में उन्होंने रिपोर्ट भेजा रानी को। क्या रिपोर्ट भेजा उन्होंने, कि मैंने पूरे भारतवर्ष में 10 दिशाओं में घुमा मैं, लेकिन मुझे एक भिखारी नज़र नहीं आया, नॉट वन सिंगल बेगर ऑल्सो। आज तो जैसे 4 नियम तोड़े वाले जगह कदम कदम पर मिलते हैं, वैसे कदम कदम पर भिखारी मिलते हैं आपको। सडनली पॉश बिल्डिंग के सामने जाएंगे आप, आईटी बिल्डिंग में तुरंत एक आदमी सामने आएगा आपके हाथ फैलाते हुए। एक भिखारी नजर नहीं आया। मैक्स मुल्लर रिपोर्ट दिया है रानी को, और रिपोर्ट अभी भी व्हाट्सएप पे कभी भी आते रहता है पुराना एकदम। और कहते हैं इनका संस्कृति इतना स्ट्रांग है कि हर व्यक्ति सेटिस्फाइड है, एकदम संतुष्ट है व्यक्ति। यह और दूसरी बात है, आज देखो लोगों को कितना मिलना, थोड़ी कमी लगता है, वो संतुष्टि है ही नहीं। बांग्लादेश नंबर 1 में है संतुष्टि में, सब रिपोर्ट में आया था बीच में एक बार। लोगों को और आनी और चाहिए उनको, दूसरी बात। और तीसरी बात कहता है कि इनकी सारी जो संस्कृति है ना, इनकी समृद्धि, हाँ उनका प्रॉस्पेरिटी जो भी है, वो एक जानवर जो है गाय उसके ऊपर आधारित है। सारी संस्कृति, सारा जीवन, सारा इकोनॉमिक्स, मन की संतुष्टि जो भी आप कहते हो, वो सब एक गाय के ऊपर आधारित है। और एक गाय को अगर आप इनके जीवन से निकाल दोगे तो ये व्यक्ति निर्भर हो सकते हैं हमारे ऊपर। जब निर्भर होंगे तब उस पर राज कर सकते हैं। उस जमाने में ये व्यभिचार, ये डिवोर्स, ये मांसाहार वगैरह वगैरह बहुत कम था, ना नहीं से बोल सकते लेकिन नगण्य के बराबर था। हमारे बचपन में हमने कभी डिवोर्स सुना ही नहीं। हमने डिवोर्स क्या होता है, घटस्फोट मतलब क्या होता है, ऐसा मैंने मम्मी को पूछता था मैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ घटस्फोट, ये स्फोट किधर होता है, ऐसा पूछता था मैं बचपन में। कुछ सुना ही नहीं था कभी, किसी ने विवाह किया और अपनी पत्नी को छोड़ दिया, पति को छोड़ दिया, कभी सुना ही नहीं था। हमारे गुरुदेव कहते हैं, इंग्लैंड नहीं अमेरिका की बात कर रहे हैं, हमारे गुरुदेव का जन्म 1950 में हुआ है, तो उनके जो शिकागो में गांव में रहते थे, उनके गांव में महाराज जी ने बचपन से लेकर जवान होते तक डिवोर्स नाम का शब्द नहीं सुना था। भारत की बात नहीं कर रहे, उधर की बात कर। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमारी संस्कृति का बल है ये, जिसके आधार पर हम चला करते थे। लेकिन ब्रिटिशों ने आकर हमारा पहले गायों का चरने का जो गायरान है ना, गायरान वहाँ पर चाय लगा दिया उन्होंने, क्योंकि चाय को जो ना उतरते हुए पानी वाला जगह चाहिए, डोंगर का जो होता है ना, पर्वत का उतरता हुआ, वहाँ पर चाय लगती है और वो पानी बहता है तो चाय के लिए अच्छा रहता है। और वही जगह हमारी गाय चरती थी, गायरान में, वहाँ चाय लगा दिया उन्होंने तो गाय का, गाय चरने का जगह ख़त्म हो गया, तो फिर गाय बोझ बन गई, क्या करे गाय का अभी, तो फिर गाय को बेचना शुरू हो गया, फिर बेचना में बाद में काटना शुरू हो गया। काटने वाले तो यही है ब्रिटिश, ब्रिटिश लोग तो वेट ही कर रहे थे, और लोगों को चाय प्रस्तुत किया, बोला ये चाय पियो, बहुत बड़ा अच्छा ड्रिंक है, इससे इतना बढ़िया उत्साह आता है, इसमें लीवर में ऐसा केमिकल आता है और ऐसा दिमाग में मेमोरी बढ़ जाती है और उत्साह, कई घंटे काम कर सकते हैं आप, सुबह पियो चुस्त रहो। तो लोगों को चस्का लग गया। अभी आप नए बालक को जब जन्म लेता है ना, 6 महीने दूध पीता है वो, 1 महीने 1 साल के बाद चलने लगता है, तो मम्मी पापा बड़े प्यार से उसके मुंह में चाय लगाते हैं, लगाते किसे लगाते, और बोलते हैं देखो देखो कैसे मिटकी मार के पी रहा है, कैसे करके पी रहा है, और दोबारा मुंह आगे कर रहा है। तो अनजान आदमी को भी चाय की टेस्ट अच्छी लगी, अच्छी लगेगी उसको, और अच्छी लगेगी बाद में क्या हो गया, आदत बन जाएगी उसकी, है ना। इस तरह से ब्रिटिशों ने बड़ी सिस्टमेटिकली, बड़ी ढंग से, बड़ी योजनापूर्वक रीति से हमारे कमजोरियों को हेरते हुए धीरे धीरे करके हमारे सारे संस्कृति को काट दिया, और फिर आज लोग मांसाहार को स्टेपल आहार मानते हैं, नशा करने को तो ऐसे ही नॉर्मल मानते हैं, और व्यभिचार को भी नॉर्मल मानने लगे हुए हैं, बहुत आगे बढ़ चुके हैं अभी, और जुआ का तो धंधा ही कर दिया, गवर्नमेंट ने सैंक्शन कर दिया, अभी तो ऑफिशियल जुआ हो गया, अभी कहीं भी आप जुआ जाके ऑफिशियल खेल सकते हैं, गवर्नमेंट टैक्स भी लेते हैं उनसे, बोलते हमारे इनकम का साधन है ये गवर्नमेंट चलाने का। तो जो 4 पाप के स्तंभ है वो भी आमदनी के साधन हो गए लोगों के, लेकिन ये जब 4 नियम हम पालन करेंगे तो मनुष्य बनेंगे, और उसके बाद में जब जप करेंगे तो भगवान की ओर प्रगति करेंगे, फिर आध्यात्मिक उन्नति होगी, आध्यात्मिक उत्कर्ष होगा, डेवलपमेंट होगा, विकास होगा, भगवान की अनुभूति होगी, और तब क्या होगा, तब दुनिया में दुख भी आएंगे तो आप पर असर नहीं करेंगे। वो कैसा है ना, दर्द दुनिया में सब जगह पर है, लेकिन दर्द का दुख आपको होना है कि नहीं होना, ये आपके हाथ में, किसी के हाथ में से जेब में से वो कभी पॉकेट गिर जाता है तो 10,000 रुपये ऐसे ही गिर जाते हैं, तो बोला ठीक है भगवान की इच्छा है, क्या करें। दूसरा आदमी दिन रात रोएगा, 3 दिन 4 दिन तक रोएगा, पुलिस चक्कर काटेगा, मेहनत करेगा, वो करना बुरा नहीं है, लेकिन एक पर बहुत असर होगा लॉस का, और एक पर कुछ नहीं होगा, तो कौन तय करता है ये कि आप पर होगा कि होगा कि नहीं होगा, वो आपकी आध्यात्मिक उन्नति पर आधारित है, एक ज्ञान के ऊपर आधारित है। अगर आपको ज्ञान है तो आप समझेंगे। वो हमारे वृंदावन में एक माताजी इंग्लैंड से आई थी, जब वो टर्न कर रही थी तो एक लुटेरे ने उसका तुरंत बैग ऐसा छीन कर उसकी आंखों में आंखें रखते चला गया, वो भागा भी नहीं, ऐसे ऐसे लिया, उसको एक नज़र दिया, वो सीधे चला गया। उस समय माताजी को ऐसे अनुभूति हुई कि पिछले जन्म का कुछ हिसाब किताब करने को आया था वो, ऐसा उसको एक झट से अनुभूति मन में हुई, उसने भी विरोध नहीं किया, उसको जाने दिया और तुरंत वहां से मंदिर चली गई। वो जो भक्त है वही सोच सकता है ऐसे, नहीं तो आप कुछ ना कुछ करेंगे, जरूर करना भी चाहिए ऐसा नहीं, लेकिन मैं सोचता रहा ये उदाहरण से, अरे अगर मैं होता उस जगह तो मैं कुछ ना कुछ और करता, लेकिन माता जी तो इतने अमेरिकन है फिर भी शांति से निकल गई। वो उसको पता था मैं कुछ करूंगी तो भी सुबह का समय था, वहां पर कोई था नहीं, मैं चिल्लाऊंगी तो करूंगी क्या, वो चलने के बदले भाग जाएगा वो, फिर मैं क्या करूंगी, बेकार में अपना ब्लड प्रेशर बढ़ाऊंगी, टेंशन लूंगी, हाथ में तो कुछ आने वाला नहीं है। शांति से मंदिर चले गए, मंगल आरती अटेंड की, वापस आ गई, हमको एक कहानी बताया। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आपको भी ऐसा ही करना चाहिए, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि भगवान की भक्ति हमको क्यों करना है। भगवान की भक्ति करने से ये जीवन जो हमको जीना पड़ रहा है ना यहाँ पर, वो आसान हो जाएगा, और न केवल आसान हो जाएगा, उसके अंत में इस जीवन से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करके हम भगवान के धाम में जा सकते हैं। अब ये सब श्रद्धा से शुरू होता है, श्रद्धा है तो आज में सारी जितनी बातें की उसको मतलब है, श्रद्धा नहीं है तो सब बेकार की बातें हैं, वेस्ट ऑफ टाइम, क्यों सोचना है, क्यों बोलना है, क्यों करना है, करते रहो जिंदगी जैसे आते रहे। जानवर कैसे करते हैं, जैसे सामने आते ही वस्तु उसका भोग लेने लेते रहते हो, है ना, वो डोंट डिस्क्रिमिनेट कि ये गाड़ी में मैं केले की गाड़ी में मुंह डालूं कि मत डालूं, नहीं, उनको जब भूख लगती है तो जहां खाना दिखता है वहां मुंह डाल देते हो, फिर डंडा पड़ेगा तो वापस जाते हैं, वापस आके वहां मुंह डालते हैं। उनके लिए कोई नीति नियम नहीं होता है, ऐसा करना है ऐसा नहीं करना है, गलत है सही है, कुछ नहीं। इंद्रिय और इंद्रिय के विषय, जहां संपर्क होता है तुरंत उनका अटैक होता है उधर, और हमारे लिए हम सोचते हैं करना चाहिए नहीं करना चाहिए, देना चाहिए नहीं देना चाहिए, कुछ हमारे लिए नियम है। तो हम लोग बड़े भाग्यवान लोग हैं कि हमको ऐसी कल्पना हमारे गुरुजी के द्वारा प्राप्त हुई कि आप सब लोग डॉक्टर लोग भक्त बने हो, कोशिश कर रहे हो भक्त बनने की, साधना कर रहे हो, तो आपके मरीजों को भी ये लाभ मिलना चाहिए। केवल आमंदनी के लिए आपको मेडिकल प्रमोशन नहीं करना चाहिए। हमको ये बात अच्छी लगी उस समय, क्योंकि ऐसा कौन मेडिकल कॉलेज बताते नहीं, कोई मेडिकल कॉलेज में ऐसा कोई विषय नहीं है कैसे बर्ताव करना है मेडिकल डॉक्टर को, कोई बताता नहीं है, खाली तलवार हाथ में देते हैं बस। तलवार चलानी कैसी है, कब नहीं चलानी है, कब चलानी है और कैसे चलानी है कोई नहीं सिखाता। नीति और एथिक्स कोई नहीं सिखाता, अभी तक विषय नहीं है, आज भी नहीं है मेडिकल कॉलेज में। इतना ज़रूरी है, इतना अनएथिकल अनैतिक काम मेडिकल में चल रहे हैं आजकल, लेकिन अभी भी विषय नहीं आया है मेडिकल प्रोफेशन में। तो फिर कम से कम हमारे बस में जितना है उतना हमको करना चाहिए। तो ये प्रेमांजलि कार्यक्रम उसी का एक प्रतीक है कि जिसके द्वारा हम किसको तो हृदय को परिवर्तन नहीं कर सकते, वो तो आपके हाथ में है क्या करना है क्या करने करने का, लेकिन विचार ज़रूर प्रकट कर सकते हैं। उसके बाद में फिर अगर बताने के बाद भी अगर आपका बच्चा है, बच्चा का आपने संस्कार दिए सब कुछ दिया, सयाना हो गया 18 साल का हो गया दारू पीने लगा, क्या कर सकते हैं आप, लेकिन आपने अपना कर्तव्य कर दिया, जब तक आपके कब्जे में था अपने अच्छे संस्कार दिए उसको, इतना ही हम कर सकते हैं। हमारी तरफ से जो हमारा कर्तव्य है वो हम कर सकते हैं। तो ये प्रेमांजलि भी एक हमारे वैद्यकीय व्यवसाय का एक कर्तव्य है, जो हमारे मरीज हमारे पास इलाज करके गए उसके लिए सत्संग आयोजित करना, ये समझ के नहीं कि हम आपसे अधिक जानते हैं इसके लिए नहीं, लेकिन एक प्रयोजन है ये कि इसके कारण हम एकत्र आएंगे, कुछ भागवत की बातें सुनेंगे, भगवान की बातें सुनेंगे, उसका गुणगान करेंगे, उन पर प्रश्नोत्तर करेंगे, चर्चा करेंगे, और जो जीवन में नहीं है उसको प्राप्त करने का प्रयास करेंगे आध्यात्मिक भगवान के विषय में। भगवान का विषय ऐसा है कि आप जब भी जहाँ पर भी आप जैसे भी करोगे वो लाभदायी होता है। कभी भगवान के विषय में चर्चा करके किसी का नुकसान नहीं होता है, धन के विषय में चर्चा करके कभी नुकसान भी हो सकता है, लेकिन भगवान के विषय में उनके संपर्क करने के विषय में चर्चा करने से लाभ ही लाभ है, कभी नुकसान नहीं। भगवान दिव्य व्यक्ति हैं और दिव्य व्यक्ति संपर्क करने से हम भी दिव्यता को प्राप्त करते हैं, और बड़े भाग्य की बात है ये, जो व्यक्ति इस मार्ग में आता है वो कभी दुखी नहीं होता है, दुखों के पहाड़ टूटने पर भी वो दुख का अनुभव नहीं करता है। ऐसा नहीं कि दुख नहीं आते भक्त के जीवन में, अरे भक्तों को भी कैंसर होते हैं, भक्तों को भी कभी फाइनेंशियल लॉस हो जाता है, कभी क्या क्या होता है, घर में मौतें हो जाती हैं, क्योंकि वो भी दुनिया में जीते हैं ना, वो तो उनको भी कष्ट होता ही है, पोल्यूशन हो रहा है तो भी उनको हवा खानी पड़ेगी उसकी, पड़ोसी अगर शराबी होगा तो उसकी चिल्लम चल्ली सुनना पड़ेगा आपको, वो सब होता है, लेकिन फिर भी भक्त जो है वो शांत रहता है और शांति से जीवन में प्रगति करते रहता है, तत्प्रज्ञ हो सकता है वो। ये जो कला है इस जीवन में रहते हुए स्थितप्रज्ञ रहने की, वो आध्यात्मिक विद्या से हम प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आप लोगों को विनती है, आप में से कुछ बुजुर्ग भी लोग हैं, कुछ जवान भी हैं, सब लोगों को विनती है कि जहाँ पर भी है हम है, जिस भी स्थिति में दुनिया में हैं, भगवान के रास्ते पर उस समय से चलना चाहिए जब पता चले, तुरंत चलना चाहिए भगवान के रास्ते पर, सोच विचार करने का समय नहीं लेना चाहिए कि अभी मैं सोचता हूँ, जरा थोड़ा रुको आप, जरा दो दिन सोचता हूँ फिर आता हूँ। एक एक क्षण मनुष्य जीवन का बहुत कीमती है, वो हर एक क्षण आपको मनुष्य जीवन का भगवान की ओर प्रगति करने में सहायता कर सकता है, क्योंकि ये मनुष्य जीवन का समय है, प्राणी जीवन का या पंछी जीवन का समय नहीं है, ये मनुष्य जीवन का हर एक क्षण जो है, जो मनुष्य जीवन का प्राप्त हो गया आपको, वो भगवान की ओर प्रगति करने में समर्थ है, सक्षम है, वो आपको दे सकता है वो सहायता। इसको कहते हैं इंग्लिश में ह्यूमन टाइम, ह्यूमन टाइम जो है वो भगवान की ओर प्रगति करने के लिए बहुत पावरफुल है, इंद्रिय भोग के लिए पावरफुल नहीं है वो, वो फंस जाएंगे हम लोग। और ये भारत भूमि जो हमारी है ये हमारे लिए बहुत बड़ा भाग्य की बात है। इस भूमि में जन्म लेने के लिए कई जन्मों तक पुण्य करना पड़ता है, फिर इस भूमि में जन्म मिलता है। भारत भूमि ते होइ लो मनुष्य जन्म जार, शास्त्र का विधान है ये। तो हम बाकी के देशवासियों से अधिक ज़्यादा भाग्यवान हैं, जहाँ पर लोगों को धर्म का धा भी पता नहीं है, क्या बताएंगे उनको आप। प्रभुपाद जी ने कितना कष्ट किया समझाने के लिए उनको कि कृष्ण कौन है, पता ही नहीं उनको, ऐसा कौन व्यक्ति होता है, कहाँ से पढ़ा आपने, वो भी ब्लू रंग का होता है बोलते ब्लू रंग का कौन व्यक्ति होता है क्या, हमारे साइंस में कभी दिखाई नहीं पड़ता है। यहाँ से शुरुआत है उनकी, ABCD भी नहीं मालूम उनको, लेकिन यहाँ पर रिक्शा ड्राइवर को बोलो, वो भी आपको कर्म का सिद्धांत बताएगा, रिक्शा का चला चलाते बताएगा कि कर्म और पुण्य और पाप क्या होते हैं और ये क्या करने से क्या होता है और कहाँ जाने से क्या होता है, सब पता है उसको। और वहाँ के बड़े से बड़े अफसर को भी पता नहीं है कि भगवान कौन है और कर्म क्या होते हैं। वो ये भूमि का भाग्य है जिसमें हमने जन्म लिया है। अगर ये भूमि में जन्म लेने के पश्चात जहाँ पर कण कण में भगवान का ज्ञान बसा हुआ है, अगर हम भगवान के विषय में अगर उत्सुक नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है हमको, तो हमारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा, पूरा वेस्ट ऑफ टाइम। सब लोग अमेरिका इंग्लैंड भाग रहे हैं और वहाँ जाने में अपना गौरव समझते हैं। हमारे परिवार के आधे लोग तो अमेरिका में हैं और इतना गुणगान करते हैं वहाँ के लोगों का और वहाँ के संस्कृति का, लेकिन सब खो रहे हैं अपने ज़िंदगी का, सारे मूल्य खो रहे हैं, कोई नियम नहीं है। हमारे परिवार में एक ऐसे व्यक्ति है जो एक कुत्तों के अस्पताल में वॉलेंटियर के रूप में काम करते हैं, और उस कुत्तों के अस्पताल में उनको क्या है शुरुआत की शिक्षा, केवल कुत्तों की जो विष्ठा है, जो स्टूल है, उसको कैसे हैंडल करना है वो सिखाते हैं। और वो उसके कथाएं जो है उनका अनुभव की, वो बड़ी मसाला डाल के यहाँ पर आके बताते हैं कि मेरी लड़की ऐसे जाती है, वहाँ जाती है, फिर उनको अभी वो ट्रेनिंग चल रही है। अरे मैंने कहा जब मनुष्य इतने तकलीफ में है, कष्ट में है, तो मनुष्यों की सेवा करने के लिए कुत्तों की सेवा करने जा रहे हैं। और प्रभुपाद जी ने उसका जवाब भी दिया हुआ है शास्त्र में, उनके किताबों में, कि जब गॉड को भगवान भूल जाते हैं तो उसको डॉग की सेवा करनी पड़ती है। कितना सत्य है ये। हाँ, जो गाय को चराने में हम लोग इतना गर्व मानते थे, अभी वही लोग कुत्ता को लेकर चलते हैं रोज सुबह, और कुत्तों को लेकर चलना अभी ये गर्व की बात हो गई। वो पूछते हैं कि आपका कुत्ता कौन सी जाति का है, तो आप बोलेंगे अल्सेशियन का है, मेरा तो जर्मन शेफर्ड है, तुम्हारा इसका है, मेरा उसका है, मेरा जर्मनी का है, तुम्हारा इंग्लैंड का है, और इसमें ये खूबियाँ हैं, वो रात को भी देख सकता है और दूर का सांस भी ले सकता है और सूंघ सकता है और पहचानता है कौन गुनहगार है और कौन ये है। इसका चर्चा चलती रहती है गार्डन के अंदर। और वही हम लोग गीर और धारपारकर और देसी गायों को लेकर घूमने में अपने को गौरव समझते थे, गाय की पूछ का स्पर्श होने से अपने आप को गौरव समझते थे। अभी गाय को लेकर मैं चलूंगा तो लोग मुझे हंसेंगे, और कुत्ते के लिए चलूंगा तो लोग मेरा गौरव करेंगे, देखो कि डॉक्टर देखो रोज कैनवास के बूट लेकर कितना बढ़िया कुत्ता को लेकर घूम रहे हैं। ये संस्कृति का अदब पतन है, ये हम लोग अपनी संस्कृति को भूलकर विदेशियों की संस्कृति को अपना रहे गर्व समझकर, उनके कपड़े पहनते हैं, उनके जैसी बातें करते हैं, उनके जैसे विचार रखते हैं मन में, उनकी जैसे किताबें पढ़ते हैं, जो कहो करेंगे उसको प्रमाण मानकर चलते हैं, और हमारे यहाँ का सब चीज़ को खिलौना मानते हैं। ये सब ब्रिटिशों की कृपा है हमारे ऊपर, लेकिन फिर भी कुछ गया नहीं है। हमारा जो ये है ना, जो कहते हैं ना हमारा निटिंग जो है ना, हमारा बांध काम अंदर का जो है ना, वो बहुत मजबूत है, इसलिए अभी भी धर्म जीवित है यहाँ पर, क्योंकि ये भूमि जो है ना वो भगवान के चरणों से पुनीत हो गई है, पावन हो गई भूमि है ये। और अगर हमने इसमें जन्म लिया है जिसमें संतों ने और भगवान ने स्वयं जन्म लिया है, तो हमारा एक उत्तरदायित्व होता है कि हम खुद उसको पालन करें, भगवान के देव आदेशों को, और लोगों को भी बताएं, लोगों को भी प्रवृत्त करें। आजकल तो डॉक्टर जब बनता है तो खुद पीता है और बाकी लोगों को पीने के लिए प्रवृत्त करता है। आप उनको बोलेंगे सर अभी थोड़ा लीवर का गड़बड़ हो गया है, थोड़ा सा बिलिरुबिन बढ़ गया है, बोले कुछ नहीं, एक महीना आराम करो उसके बाद पी सकते हो, एक आध पेग ले सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है, डॉक्टर बोलेगा आपको, खुद बोलेगा, क्योंकि वो खुद पीता है। फिर वो डॉक्टर खुद पीता है, हाथ में पकड़ के सिगरेट ऐसा उधर रखा हुआ है और मरीज को एग्जामिन कर रहा है, फिर आके एक पफ लेता है, फिर एग्जामिन करता है, फिर पेपर लिखता है, तो पेशेंट को कहते हैं अभी आपको लीवर का फेफड़े का बीमारी हो गया है, आपको सिगरेट बंद करना पड़ेगा। सर फिर न्यूमोनिया ठीक होने के बाद पी सकते हैं ना? हाँ, उसके बाद पी सकते हैं। ऐसे वैद्य आपको मिलेंगे तो क्या कल्याण होगा आपका, बताइए आप। तो जो वैद्य ब्राह्मणिकल कल्चर को अपनाते हैं वो सही वैद्य, और ऐसे वैद्य कहाँ मिलेंगे आपको, लेकिन फिर भी नामुमकिन नहीं है। हम देख रहे हैं ना हमारे कितने कलीग्स भक्त बन गए हैं, जहाँ गलत काम करते थे वो सही काम कर रहे हैं, अभी जीवन एक मिशन में लगा रहे हैं, अपने जो कला हमको प्राप्त हो गई उसको गरीबों की सेवा में लगा रहे हैं निरपेक्ष भावना से। हाँ, बिजनेस भी करते हैं, अपना आमदनी करते हैं, संडे को किसी फेस्टिवल में किसी कैंप में जाकर फ्री सेवा देते हैं, ये हमारा कर्तव्य है। हमारा विद्या जो है केवल पैसे कमाने के लिए नहीं है, हमारी विद्या भगवान की भेंट है हमारे लिए। हमारे से कितने लोगों ने पढ़ाई किया, सबको एडमिशन नहीं मिला, हमारे लिए भगवान ने की हुई कृपा है वो। किसी का दर्द मिटाने की कला प्राप्त करना भगवान की कृपा है, तो आमदनी होने के बाद पेट भरने के बाद में लोगों को बांटना चाहिए उस विद्या को, तब जाके आपकी विद्या सफल है, तब जाके विद्या परिपूर्ण है, तब जाके वही विद्या भगवान की कृपा को आकर्षित करेगी। ये सब शास्त्र में दिया है, हमारा धन है ये पूरा, हम लोग इसके धनी हैं, हमारे देश का धन है ये, जिसको हम निग्लेक्ट कर रहे हैं और पाश्चिमात्य लोगों के संस्कृति को अपना रहे, कितनी घिलौनी बात है, हमको जागना चाहिए। हाँ, और भारतवर्ष पूरा विश्व भारतवर्ष था, आज क्या हो गया है, उसके भी बांग्लादेश अलग हो गया, श्रीलंका अलग हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया, बर्मा अलग हो गया, सब अलग हो गया, अभी जितना बचा है उसमें भी टुकड़े करने की कोशिश कर रहे हैं। तो भारतवर्ष है किधर, लेकिन भारतवर्ष आपके हृदय में है। अगर आप इस भूमि का महात्म्य कम नहीं होता है, यहाँ पर बैठ के पाप करने के बाद भी इस भूमि का महात्म्य कम नहीं होता है, क्योंकि भूमि चिरंतन पावन पावन भूमि है, ये हमको उसकी पावनता को जागरूक करना है। पवित्र क्षेत्र भी अपनी कृपा तब प्रकट करता है अपनी गौरव को, जब वहां पर जाके हम भजन करते हैं। उस तरह से भारत भूमि, अगर आप भजन करेंगे तो भारत भूमि अपना गौरव आपके लिए प्रकट करेगी। तो माँ है ना, वो तो माँ की आप सेवा करोगे तो माँ अपने पूरा कृपा आपको देगी। तो माँ कोई मारने जाओगे तो माँ अपनी कृपा सब समेट लेगी, बोला नहीं ये लायक नहीं है उसके लिए। उसी तरह से भारत भूमि भू माता है ना, वो पृथ्वी माता है, वो उस पर अत्याचार करेंगे हम पाप से तो हमारा बोझ सहन नहीं कर पाएगी, वो सारा वजन सहन कर सकती है वो। हमारे पृथ्वी पर अगर 30 गुना लोग भी बढ़ गए ना, 20 हज़ार करोड़ भी हो गए, तो भी पृथ्वी को प्रॉब्लम नहीं उसका, लेकिन असत्य और पाप का बोझ नहीं दे सकती वो, असत्य और पाप का बोझ नहीं झेल सकती वो। तो हमको चाहे वो आप बोलेंगे कितने लोगों को आप प्रेरणा देंगे, क्या नंबर होगा उनका, इतने लोग पाप कर रहे हैं उसमें 4-5% लोग, 1% आधा परसेंट लोग आएंगे तो क्या पृथ्वी में परिवर्तन होगा? परिवर्तन होगा, जिसको आप मिलेंगे उसका परिवर्तन होगा, और जिसको परिवर्तन होगा उसके लिए वो 100% होगा, है कि नहीं? जब मैं उसको अपनाऊंगा तो मेरा 100% उद्धार होगा, आधा नहीं होगा। तो एक का 100% होगा, दो का होगा, चार का होगा, तो भी 100% ही है वो, करना चाहिए उसको। लेकिन उत्तरदायित्व किसका है? शिवाजी महाराज पड़ोसी के घर में होना चाहिए, भगत सिंह नेबर के घर में होना चाहिए, मेरे घर में नहीं होना चाहिए। और मैं भी उसका फोटो रखूंगा, उसकी आरती उतारूंगा, लेकिन मेरा बेटा भगत सिंह बनने जाएगा तो मैं मना करूंगा, मेरा बेटा अगर शिवाजी महाराज बनेगा तो मैं मना करूंगा उसको। ये हमारा आजकल का विचार हो गया है, पहले खुद करना चाहिए, उसमें कोई त्याग व्याग की बात नहीं। हम भी गृहस्थ हैं, हमारे भी पत्नी है, बच्चे हैं, सब कुछ है हमारा। वैसा नहीं कि केवल ब्रह्मचारी कर सकता है और बाकी कोई नहीं कर सकता है, सन्यासी कर सकता है, गृहस्थी नहीं कर सकता है, हमको तो बड़े काम होते हैं गृहस्थों को, ऐसा नहीं है। आपके सारे कर्तव्य को निभाते हुए आप इस सब को चीज़ों को कर सकते हैं। तो जन्म सार्थक कोरी करो परोपकार, खुद का जन्म सार्थक होगा तो अपने आप हमारे संपर्क में 2 आएंगे, 20 आएंगे, 200 आएंगे, जितने भी आएंगे उनका उद्धार हो सकता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी कोई किसी का प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, या कुछ बताना हो अनुभव के बारे में तो बोल सकते हो। आपने कुछ कहना चाहा था पहले? उनको माइक देंगे जरा,